We'll start again at Revelation chapter 17, right where we stopped in our last lesson.
हम वहाँ से शुरू करेंगे मुकाशफा 17वें बाब से जहाँ पर हमने ख़त्म किया मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब.
All right, we found the woman sitting on a political beast.
हमने देखा कि ये औरत जो सियासी हैवान पर बैठी हुई है.
So let's pick up now at verse 3 in Revelation chapter 17.
सत्रहवें बाब की तीसरी आयत पर हम गौर करेंगे.
So he carried me away in the spirit in the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy.
बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया. वहाँ मैंने किरमिजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके साथ सर और दस सिंह थे एक औरत को बैठे हुए देखा.
Yeah, try and stop where I stopped if you can.
Okay. I have read only three words.
Yeah, I didn't read all of verse
3. Okay.
Full of names of blasphemy.
जो कि कुफर के नामों से लिपी हुई थी.
And if you go back into a direct translation from the Greek, it says full of blasphemous names.
अगर आप ग्रीक के तर्जमे को देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो कुफर के नामों से पूरी तरह से लिपी हुई थी मुलब्बस थी.
And he says, people saying, I'm Baptist, I'm Methodist, I'm Pentecostal.
जहाँ देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी अपनी तंजीमों का नाम लेते हैं. मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं कैथलिक हूँ.
When they should be saying, I'm Christian.
जबकि उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं एक मसीही हूँ.
He said, but to identify yourself by a denominational name, he said, it's blasphemy to God.
तो अगर हम तंजीमों के नाम से अपने आप की शनाख्त करते हैं तो यूँ है कि ये कुफर के नाम है जिनसे वो लिपी हुई है.
And it says that she has seven heads.
और लिखा उसके सात सर हैं.
Now verse 9 says,
उसकी नवीं आयत को देखिए.
And here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman sitteth.
और यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है. वो सातों सर सात पहाड़ हैं.
I've only been in Rome one time.
मैं रोम में सिर्फ एक दफा गया हूँ.
And I took a short tour bus ride.
तो मैंने एक बस पर थोड़ा सा सफर किया.
And they took us on top of this little hill.
और वो हमें उस पहाड़ी के ऊपर ले गए.
And then the guide told us.
और फिर उस जो रहनुमा था हमारा उसने हमें बताया.
From here you can count seven hills.
तो उसने कहा यहाँ खड़े होकर आप उन सात पहाड़ की चोटियों को गिन सकते हैं.
We are the city that sits on seven hills.
उसने कहा कि हम वो लोग हैं, वो शहर है जो सात पहाड़ियों की चोटियों पर बसा हुआ है.
Just exactly like the Bible says.
जैसा कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है.
And it says she has 10 horns.
और ये लिखा हुआ है कि उसके 10 सिर हैं.
Verse 12.
10 सींग हैं. 12वीं आयत.
And the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet.
और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई.
But receive power as kings 1 hour with the beast.
मगर उस हवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहत का सारा इख्तियार पाया.
And Brother Branham emphasized as kings.
और भाई ब्रैनम ने इस बात पर जोर दिया है जैसे बादशाह.
They are not kings.
वो बादशाह नहीं हैं.
They're dictators.
वो dictators हैं.
And he says, now look around the world.
उसने कहा दुनिया को देखें.
He said, every dictator that has risen up in recent time embraces communism.
और जो dictator भी मंजरेआम पर आया है उसने communism को अपनाया है.
So he said, this will be 10 communist dictators.
तो उसने यहाँ ये बताया भाई ब्रैनम ने कि ये 10 communism dictator होंगे.
And he says communism and Catholicism will make a pact to work together.
और Roman Catholic में और communism में एक मुआयदा होगा जिसके तहत वो चलेंगे.
And if you remember in Daniel chapter 8, it said she has mighty power but not her own.
अगर आप दानियल 8वें बाब को याद रखें तो वहाँ जिक्र है कि उसके पास बड़ी बहुत ज़्यादा कुदरत है लेकिन उसकी अपनी नहीं.
Because she will use the armies of other nations.
क्योंकि वो दूसरी कौमों की फौज को इस्तेमाल करेगी.
Because these 10 communist nations will give themselves over to her for a period of time.
ये जो 10 कम्युनिस्ट लोग हैं ये थोड़े वक्त के लिए अपना आप उसको अपनी सारी कुव्वत उसे देंगे.
Now let's go back now to verse 5.
आइए 17वां बाब उसकी पांचवीं आयत की तरफ चलें.
And upon her forehead was written mystery Babylon the great, the mother of harlots and abominations of the earth.
उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था राज बड़ा शहर बाबल कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां.
Now, why would she be called Mystery Babylon?
ये बाबल की का भेद क्यों कहलाता है?
Because the first world power was Babylon.
क्योंकि पहली सियासी कुव्वत जो है ये बाबल था.
And as we trace that power on forward,
और जब ये कुव्वत जो है ये आगे आती है,
the fourth power was always a mystery.
तो जो चौथी कुव्वत थी वो एक भेद बन गया.
But here we found the power of Babylon in the Roman Church.
तो यहाँ हमने बाबल की कुव्वत जो है उसको रोमन कैथोलिक चर्च में देखा.
In verse 1, the church was called a whore.
और हमने देखा कि पहली आयत में उसको कसबी कहा गया है.
But verse 5 says she has daughters.
लेकिन पांचवी आयत में लिखा है कि उसकी बेटियां हैं
and they are harlots.
और वो भी कस्बी हैं.
Is there any difference between a whore and a harlot?
क्या इसमें कोई फर्क है कस्बी और कस्बियों के अंदर?
Yeah, no difference.
इसके अंदर कोई फर्क नहीं है.
But now here's the interesting thing Brother Branham brings out.
भाई ब्रैनम ने जो बात बयान की है यहाँ उसके अंदर कुछ अच्छी बात है.
He says, remember, every little girl is a virgin.
याद कीजिए कि हर छोटी लड़की जो है वो कमवारी है.
So these church movements start out as virgin movements.
तो ये जो कलीसियाएं की बुनियाद डालती है जब ये शुरू होता है तो उनकी हालत पकीज़ा है.
The Lutheran virgin, the Wesleyan virgin.
इसी तरह हम देखते हैं कि जब लूथरन शुरू हुआ या वेस्ली शुरू हुआ तो वो पकीज़गी का मेयार था.
Because they start out properly.
क्योंकि उन्होंने पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उसका आगाज किया.
But as soon as they organize around their truth.
और जब वो अपनी सच्चाई के इर्द गिर्द अपने आप को कर लेते हैं तैयार कर लेते हैं
and become a denomination,
और एक तंजीम बन जाते हैं,
then they're doing just what the mother church did.
तब वो उस तरफ मुतवज्जो होते हैं जो उनकी मां कलीसिया कर रही होती है.
Because the Roman Catholic Church was the first organized church.
क्योंकि रोमन कैथोलिक सबसे पहले तंजीम के मंजरे आम पर आया.
Under the Bible pattern,
Bible के नक्शे कदम पर,
the elder is the highest office in the church.
Elder होना जो है ये कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा मर्तबा है.
And the pastor is an elder with a call on his life to be pastor.
तो पास्टर जो है वो एक एल्डर है जबकि उसकी जिंदगी के अंदर ये बलाहट है कि वो ये काम सरंजाम दे.
And there is no one over the pastor.
और पास्टर के ऊपर और कोई बंदा जो है वो इख्तियार नहीं रखता है.
He is the highest office in the church.
ये सबसे बड़ा ऑफिस है उसकी कलीसिया के अंदर.
And he submits only to the Holy Ghost.
तो वो सिर्फ अपने आप को रूल कुदस के ताबे करता है.
Now if he wants to call someone else to come in,
अगर वो किसी को बुलाना चाहता है,
that's fine.
ये अच्छा है.
But the final decision is the pastor's.
लेकिन जो सबसे आखिरी फैसला है उस बात को करने का वो खादम है, उन्हीं के बान है.
There is no bishop.
हमारा कोई बिशप नहीं है.
Or district overseer.
ना कोई district overseer है.
Or cardinal.
और ना कोई cardinal है.
Or pope.
ना pope है.
That is over the church.
ये सब बातें खत्म हैं.
The local church answers to God only.
क्योंकि जो मकामी कलीसिया है वो खुदा को जिम्मेदार है.
Now there's problems with that.
इसके साथ एक मसला है.
We think.
हम ये सोचते हैं.
Let's take a look at us in the message.
आइए हम अपनी मैसेज के अंदर भी इस बात को देखें किस तरह.
And now in one of the churches.
एक चर्च के अंदर.
This pastor does some bad things.
कोई आप खादम जो है या पास्टर जो है वो बुरी चीज करते बुरी हरकत करता है.
And we think, oh, he shouldn't be in the message.
और हम
Look what he did.
और हम ये समझते हैं कि उसे मैसेज के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने ये काम किया है.
No, the local church is sovereign.
वो वहाँ का मकामी जो चर्च है ये उसकी जिम्मेवारी है.
We can't go into another man's church and tell them what to do.
हम किसी के चर्च में कलीसिया के अंदर जाकर उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते कि तुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है.
A few years ago in Africa.
कुछ साल गुजरे हैं अफ्रीका के अंदर.
One of the pastors committed adultery.
एक पास्टर ने जनाकारी की.
And the church just voted, let's forgive him.
तो चर्च ने इस बात का इत्तेफाक राय से फैसला किया कि आइए उसे माफ करें.
And to them, that was the end of it.
तो उसके साथ ये मामला खत्म हो गया.
And they just went right on.
और फिर वो इसी तरह लगातार अच्छे से चलते
रहे. That's their privilege.
ये उनका हक है.
There's no one above the local church.
क्योंकि मकामी चर्च के ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है.
If they want an adulterer as their pastor, that's their business.
अगर वो किसी जनाकार को अपना खादम रखना चाहते हैं नागाबान तो ये उनका अपना मकसद है.
You understand?
क्या आप इस बात को समझते हैं?
We can't go in and correct that.
हम वहाँ जाकर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते.
If they ask us, we can tell them.
अगर वो हमसे पूछे तो फिर हम उनकी रहनुमाई कर सकते हैं.
If they don't ask,
अगर वो हमसे ना पूछे,
then that's their business.
तो ये उनका मामला है.
We understand.
क्या आप इस बात को समझते हैं?
Because in the true message sense, there is no one over the churches.
क्योंकि हम देखते हैं कि इस मैसेज के अंदर پاسٹر کے اوپر کوئی اور مشنری یا خادم نہیں ہے, پاسٹر بذات خود سب کچھ ہے.
Because I work in so many nations around the world.
کیونکہ میں دنیا میں بہت ساری قوموں کے اندر جاتا آتا ہوں.
People may call on me for advice.
لوگ اکثر مجھ سے نصیحت اور مشورہ مانگتے ہیں.
Can you come in and tell us what to do?
کیا آپ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا کریں؟
I can come in and show them what the message says.
میں وہاں جا کر یہ بتا سکتا ہوں کہ کلام کیا کہتا ہے.
But I have no power.
لیکن میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے.
You understand?
کیا آپ سمجھے اس بات کو؟
Because I'm not over any churches.
کیونکہ میں میرا کسی چرچ کے اوپر اختیار نہیں ہے.
The pastor is the highest office.
جو پاسٹر ہے وہ اس کا مختار ہے.
Now you know that the word missionary and the word apostle are the same.
کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مشنری اور رسول کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک ہی رتبہ ہے.
They both mean one sent.
یہ ایک ہی بات کا جو ہے مخفف ہے.
And Brother Branham said why they ever gave up being called apostles and called themselves missionaries, he said, I do not know.
Bhai Branham kehte hain ki unhone kyon shagirdi ka lafz chhod diya aur missionary kehlaye, mujhe iska koi ilm nahi.
So based on that, I'm an apostle.
To is baat par kadam rakhte hue main ek shagird hoon.
And people always say, oh, you're trying to make yourself something.
To log is baat se samajhte hain ki main shayad apne aap ko kuch bada banana chahta
hoon. I'm not an apostle, is a missionary.
Main aisa nahi karta balki apostle jo hai, shagird jo hai, wo missionary hai.
It's the same thing.
Ye ek hi baat hai.
We think of the apostles as very very big men because of their position in the Bible.
Rasoolon ko hum ye samajhte hain ki wo bahut bada rutba hai kyunki ye Bible ke andar likha hua hai.
But they just spread the message.
Kyunki wo kalam ko pesh karte hain.
They were the first missionaries.
Wo pehle missionary kehlaye.
And then like for me.
Jaise ki mere liye hai.
When we started the church in, let's say, Korea.
Jab humne Korea ke andar church ko shuru kiya.
Then I watch over the church.
To maine us kalisya ki rehnumai ki.
Because no pastor has risen up.
Kyunki us waqt tak wahan koi aadmi nahi tha jo pastor ke farz anjaam
de. So I step into the office of pastor for a little while.
Main us جگہ پہ پاسٹر کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرتا.
But I tell the church, I'm not really your pastor.
تو میں نے چرچ کو بتایا کہ میں حقیقتاً میں آپ کا خادم نہیں, میں پاسٹر نہیں.
I'm just filling an office until God raises up the real
جب
pastor.
تک خدا کوئی ٹھیک آدمی نہ کرے اس وقت تک میں اس جگہ پر آپ کی رہنمائی کروں گا.
Then I turn it over to the pastor.
تو میں نے پھر اس کے بعد وہاں جو خدا نے آدمی کھڑا کیا اس کے حوالے کیا.
And then he tells me, I don't ever want to see you again.
اگر وہ مجھے کہے کہ میں بھائی اب آپ کو دوبارہ یہاں دیکھنا نہیں چاہتا,
I leave.
میں چھوڑ دوں گا.
I've never had that happen.
میں ایسا ہونے نہیں دوں گا.
But you understand what I mean.
آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں.
He now has the authority.
اب اس کے پاس چونکہ اختیار آ گیا ہے.
Okay, now here is so now we're talking about denomination.
ہم تنظیموں کی بات کر رہے تھے.
Which places a man over the pastor.
جو کہ خادم کے اوپر ایک اور شخص کو مقرر کرتی ہے.
And when we get into the seven church ages and begin to talk about the Nicolaitans, we'll talk about that more.
اور جب ہم سات کلیسیائی زمانوں کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہمیں نیکلیوں کی تعلیم کا معیار نظر آتا ہے.
So coming out of the Roman church was all organization.
رومن کیتھولک چرچ سے نکلنا جو تھا یہ ساری تنظیمیں اس طرح سے بنی.
So when Brother Branham made this statement,
جب بھائی برینم نے کوئی بات کہی,
he says some people say the Roman church is the mother church.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رومن چرچ جو ہے یہ ماں کلیسیا ہے.
And he said, she is.
اس نے کہا ہاں وہ ماں کلیسیا ہے.
She's the mother of organized church.
وہ جو تنظیمیں ہیں ان کی ماں ہے.
But not the mother of true church.
لیکن حقیقی کلیسیا کی وہ ماں نہیں ہے.
Verse 6.
چھٹی آیت.
And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus Christ. And when I saw her, I wondered with great admiration.
اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا.
Now we know that she put to death 68 million Protestants.
ہم جانتے ہیں کہ اس نے 68 million Protestant فرقے کو قتل کر دیا.
During the dark ages.
ان تاریکی کے دور میں.
The blood of the saints.
اور یہ مقدسوں کا خون تھا.
But I wondered with great admiration, he said.
کس عجیب طریقے سے اس نے کہا یہ کتنا عجیب ہے.
It's because she's beautiful to look at.
کیونکہ اس کے نظر کرنا وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے.
All those big cathedrals.
بڑے بڑے چرچز ہیں جو کیتھیڈرل کہلاتے ہیں.
All the cardinals dressed in bright red.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوپ اور بشپ جو ہیں وہ بڑے اچھے لباس میں ملبس ہیں.
Swinging these bells with smoke coming out of it.
اور ان کے ہاتھوں میں وہ بیلز ہیں جن میں سے دھواں نکلتا ہے اور بخور جلاتے ہیں.
And they carry this big shiny thing up here, you know.
اور ہاتھ کے اندر ایک بڑا ڈنڈا ہے جو اس کے اوپر بڑی چمک سے سلیب اور تاج بنا ہوا ہے.
It's beautiful.
یہ بہت خوبصورت ہے.
But it's not according to the Bible.
لیکن یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. ہے تو خوبصورت.
8.
8th
The beast that thou sawest was and is not.
ये जो तूने हवान देखा पहले तो था मगर अब नहीं.
One pope lives, he dies.
एक पोप आता है वो मर जाता है.
And another pope lives.
और फिर दूसरा पोप आता है.
And there it is again.
और फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहता है.
And shall ascend out of the bottomless pit.
Verse 9 at the second part. और आइंदा था गड़े से निकलकर.
It has no word foundation.
उसके कोई बुनियाद नहीं है. थागड़ा की कोई बुनियाद नहीं है.
And will go into perdition.
और वो निकलकर हलाकत में पड़ेगा.
And they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world when they behold the beast that was and is not and yet is.
और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बना आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले तो था और अब नहीं और फिर मौजूद होगा.
Was, is not, is.
नहीं था और अब है.
That's one pope lives, another one dies, another pope comes.
तवज्जब करेंगे क्योंकि एक पोप आता है उसके मर जाने से दूसरा आता है और ये सिलसिला लगातार है.
Now remember what this says.
देखिए यहाँ क्या हमने पढ़ा.
All the world except those whose names are on the book of life.
तमाम ज़मीन के लोग सिवाय उनके जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं.
They're going to think this is wonderful.
ये समझेंगे कि ये बहुत अजीब है, ये बहुत खूबसूरत है. He is asking a question. Are you going to answer right way or later on?
If it fits right here, we might.
Yeah,
try
he says the bottomless pit is what you know. He says he will come out of the bottomless pit.
Yeah, well, over in chapter 7, we find all the demon powers coming out of the bottomless pit.
कहने के सत्रवें बाब में जैसे देखने के सारी शैतानी कुवतां जरिया ने वो था गड़े चौं दिए ने.
Yeah. Ascending out of the bottomless pit. That's the abode of Satan, really.
क्योंकि ये भी शैतानी कुवत है, ये सीधा था गड़े चो निकलना है.
Because it's anointed.
था गड़ा ऐसा गड़ा है जिधा कोई थले कोई सुराग नहीं, कोई उसकी बुनियाद नहीं कि कितनों तक गहरा.
Because it's anointed by the devil.
कौन है? हाँ. His answer is that these popes are coming from their church. How come it's about the church is about a bottomless pit, isn't it? Roman Catholic Church.
No, the power comes from the bottomless pit.
Yes.
Yeah. In chapter 9, verse 11, it says, and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name is in the Hebrew tongue is Abaddon and Apollyon. So that's in Revelations 9:11.
Shall I read it?
Yeah, 9:11.
Mukashfa Nama Bab. और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे. नामा बाप और उसकी 11वीं आयत मिल गया जी.
yes.
हाँ जी. अथा गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था. उसका नाम अबरानी में अब्दून और यूनानी में अपलून है.
सो द किंग ओवर द बॉटमलेस पिट. सो दैट्स सैटन्स अबोड. एंड ब्रदर ब्रैनम आल्सो सेड bottomless pit, no foundation, no word in it.
भाई ब्रैनम ने भी कहा है कि ये अथागड़ा जो है इसकी कोई तह नहीं है कि कहाँ तक ये है. Should we go ahead?
Back to chapter 17.
आइए वापस से 17वें बाब के अंदर चलें. We were here at verse 8 that those the names are not in the Lamb book.
Yeah. In verse 12, it talks about the 10 horns are the 10 kings.
12वीं आयत में पढ़ते हैं कि वो 10 सींग जो तूने देखे हैं 10 बादशाह हैं.
Verse 13.
13वीं आयत.
Of talking about the 10 kings.
इन 10 बादशाहों के बारे में बात करते हुए.
These have one mind and shall give their power and strength unto the beast.
उन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हवान को देंगे.
These shall make war with the lamb and the lamb shall overcome them.
वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा.
But that's not until chapter 19.
ये 19वें बाब तक ऐसा नहीं होगा.
For he is the Lord of lords and the King of kings.
क्योंकि वो खुदामंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है.
And they that are with him are called chosen and faithful.
और जो बुलाए हुए हैं वो बरगुजीदा और वफादार हैं.
And in chapter 19, that's where Christ comes back at the end of Armageddon.
और 19वें बाब में हम देखते हैं कि जब यीशु जो है अर्मगदान से वापस आएगा अर्मजदून से.
Now we're still in chapter 17.
अभी तक हम 17वें बाब में हैं.
Verse 16 now.
अब 17वें बाब की 16वीं आयत को देखेंगे.
And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore.
और वो 10 सींग जो तूने देखे वो और हवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे.
And shall make her desolate and naked and shall eat her flesh and burn her with fire.
और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खाया जाएंगे.
For God has put in their hearts to fulfill his will and to agree and give their kingdom unto the beast until the word of God shall be fulfilled.
और उसको आग में जला डालेंगे क्योंकि खुदा ने दिलों में ये खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसी की राय पर चलें और जब तक के खुदा की बातें पूरी ना हो लें.
So part of the power of the Roman church during the tribulation,
अगर हम देखें कि इन मसाइब के दौर के अंदर,
will be these 10 kingdoms.
ये 10 बादशाह जो हैं ये हो गुजरेंगी.
And then God puts it in their heart to fulfill more of his word.
तब खुदा उनके दिल के अंदर ये डालेगा कि वो उसके कलाम पर और कुव्वत के साथ अमल पर हों.
I'll again put it in Brother Branham's words.
मैं भाई ब्रैनम के अल्फाज बयान करूंगा.
Communism and Catholicism will make a pact to work together.
Roman Catholic और communism जो है वो एक मुआहदा करेंगे ताकि वो इकट्ठे हो जाएं.
He said then communism will find out Catholicism cannot be trusted.
फिर जो कम्युनिस्ट हैं उनको इन बात का इल्म होगा कि वो रोमन कैथोलिक चर्च पर एतमाद नहीं कर सकते.
And he says then they will turn on her.
फिर उसके वो मुखालिफ होंगे.
And that's why he says don't fear communism.
इसलिए उसने कहा कि कम्युनिस्टों से ना डरो.
He said because it is a tool in the hand of God to destroy your enemy.
ये खुदा के हाथ में कम्युनिस्ट जो हैं ये खुदा के हाथ में एक हथियार हैं ताकि वो जो दुश्मन की ताकतें आपके खिलाफ हैं उनको बर्बाद करें. और now, वो कौन है? रोमन कैथोलिक मामी.
Now in chapter 18 verse 8.
18वां बाप और उसकी 8वीं आयत को भी देखेंगे.
Now still speaking about the Roman church.
अभी तक हम रोमन चर्च के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं.
Therefore shall her plagues come in one day, death, mourning, famine, and she shall be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judges her.
इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यही नबूवत और गम काल और आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवि है.
And Brother Branham said, "Thus saith the Lord, communism will drop an atomic bomb on the Vatican."
और भाई ब्रैनम ने कहा खुदावंद यूं फरमाता है कि कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो वेटिकन पर गिराएगा.
Verse 9.
इसकी नौवीं आयत.
And the kings of the earth have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail and lament for her when they shall see the smoke of her burning.
और उसके साथ हरामकारी और याशी करने वाले ज़मीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे.
Standing afar off for fear of her torment.
उसके अजाब के डर से दूर खड़े हो हुए कहेंगे.
It's atomic radiation.
ये तो एटॉमिक बम की ताबकारी है.
And so they can't come close because of the radiation.
क्योंकि वहाँ ताबकारी है इसलिए वो नज़दीक तो नहीं आ सकते.
And then the next verses.
और अगली आयत में
find all the merchants of the world lamenting over their loss of business.
तो तमाम दुनिया के ताजर जो हैं चूंकि उनका तजारत के सबब से नुकसान हो गया है वो भी इस पर मातम करेंगे.
No one is saying, "Oh, we've lost our religious leader."
कोई ये नहीं कहेगा कि हमने अपना मजहबी रहनुमा खो दिया है.
They're crying because the business won't be as good anymore.
वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अब हमारा कारोबार ठप हो गया है.
And if you remember in Daniel chapter 8,
अगर आप डैनियल 8 बाब को याद करें,
the fourth beast was to cause everything on earth to prosper.
तो चौथा हवान जो था उसको जमीन पर हर चीज के बढ़ने का इख्तियार दिया गया बढ़ाने का.
Exactly what we're finding here.
वो वैसे ही जैसे हमने यहां देखा है.
Now let's go back to chapter 13.
आइए मुकाशफा 13वें बाब में चलें.
Now we're backing up in time now.
अब वक्त के साथ साथ हम जरा पीछे धुराई करना जा रहे हैं.
So now we read in verse 3 the beast was dead yet lived again.
और हमने देखा कि जो उसे जख्म लगा था वो जख्मकारी अच्छा हो गया.
And verse 4 they worshiped the dragon.
और उन्होंने उस अज़दहाक की प्रस्तुति की.
And they worshiped the beast.
और हैवान की प्रस्तुति की.
And then they say at the end of verse 4 who is able to make war with him?
तो चौथी आयत के आखिर में कि उसके साथ कौन लड़ाई कर सकेगा.
And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. Power was given unto him to continue 42 months.
और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया.
So the beast system will be given 3.5 years of power.
42 महीने के लिए उसे 3.5 साल का अरसा दिया जाएगा.
And that's the great tribulation.
और ये वो मुसीबतों का समा है.
God allows her to have that power.
खुदा उसे इजाजत देगा, इख्तियार देगा कि उसके पास ये कुव्वत हो.
Because she will be inflicting God's wrath on the word rejectors left on the earth.
क्योंकि उन लोगों पर जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया है उन पर वो अजाब डालने का इख्तियार उसे मिलेगा.
Verse 6.
इसकी छठी आयत.
And he opened his mouth in blasphemy against God.
और उसने खुदा की निस्बत कुफर बनने बुकने के लिए मुंह खोला.
To blaspheme his name.
और उसके नाम और उसके खमा.
He took away the name of Lord Jesus Christ.
यहाँ उसने खुदा यीशु मसीह का नाम निकाला.
And made his name Father, Son, and Holy Ghost.
और उसने बाप, बेटे और रूह कुदस का नाम इस्तेमाल किया.
And to blaspheme his tabernacle.
और उस खुदा की निस्बत कुफर बकने में माफ कीजिए और आसमानों के रहने वालों की निस्बत कुफर बके और से या go ahead.
He made it the Vatican.
उसने वेटिकन सिटी को बनाया.
Instead of Holy Ghost filled saints.
बजाय इसके के ऐसा जो रूह कुदस से मामूर मकसद मकदस हो.
And to blaspheme them that dwell in heaven.
और उन पर भी वो बातें बनाए जो आसमानी मकामों में रहते हैं.
He made intercessors out of the saints.
और उसके दरमियान उसने मुकद्दसों में से दरमियानी ठहराए.
And it was given unto him to make war with the saints.
और उसे इख्तियार दिया गया कि वो मुकद्दसों के साथ लड़े.
And to overcome them.
और उन पर गालिब आए.
Now this is where it's important to understand about wise and foolish virgin.
यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से समझेंगे कि नदान और दनाव और तुम कलीसियों में क्या फर्क, कुमारियों में क्या फर्क था.
Saint means sanctified one.
मुकद्दस लोगों का मकसद है पाक किए हुए लोग.
So both the wise and the foolish are sanctified.
बेवकूफ और अकलमंद दोनों कुमारियां मुकद्दस थीं.
But by the time this is happening, the bride is already gone in the rapture.
और जब ये ऐसा होगा तो इससे पहले ही दुल्हन जो है ये उठा ली जाएगी.
So this beast system is not going to overcome the bride.
ये मौका जो हवान का है ये इसके इसके तहत दुल्हन जो है वो नहीं आएगी, वो पहले ले ली जाएगी.
But she will overcome the foolish virgin.
क्योंकि वो नादान कुंवारियों पर बर्तरी हासिल करेंगे.
They refuse to take the mark of the beast.
क्योंकि उन्होंने उस हैवान के निशान को लेने से इनकार किया.
And they will die a martyr's death standing against that false system.
और वो उस झूठे सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर कत्ल किए जाएंगे.
Verse 8.
आठवीं आयत.
And all that dwell on the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
और ज़मीन के सब रहने वाले जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है उस हैवान की प्रस्तुति करेंगे.
Now we'll go into more detail on the book of life and the Lamb's book of life later.
हम इस ख्याल पर के हयात की किताब क्या है और बर्रा की किताबे हयात क्या है बाद में देखेंगे.
But I want you to remember by the time we get to verse 8 the bride is already raptured.
Yaad kijiye ki isse peshtar ke ye waqia jo 8vi ayat mein likha hua hai waqu mein aaye dulhan pehle hi utha li jayegi.
All right. Amen. So but yet here's a people on earth who are not going to be deceived because their name is in the Lamb's book of life.
Yahan hum dekhte hain ki kuch log zameen par honge aur wo dhokha nahi khayenge kyunki unke naam barra ki kitab-e hayat mein likhe hue hain.
And that's the foolish virgin.
Aur ye wo nadan kumariyan hain.
Catch that, that's the foolish virgin.
Samjhiye isko, jo niche reh jayengi hain wo nadan kumariyan par unke naam kahan likhe hue hain barra ki kitab-e hayat mein.
Because both are a predestinated people.
Kyunki ye dono jo hain ye pehle se muqarrar kiye hue log hain.
And this verse cannot apply to the bride because she's already gone.
Ha, ye danaon ko lagu ayat nahi ho sakti hai kyunki ye to ja chuke honge. Amen.
I'll give you a quote from Brother Branham.
By Branham ka main ek quote pesh karna chahta hu.
Foolish virgin will have to go through the tribulation.
Nadan kumariyon ko masaib ke daur mein se guzarna padega.
Because she refused the baptism of the Holy Ghost.
Kyunki usne Ruh Qudus ke baptisme ka inkar kiya.
Even though her name was in the Lamb's book.
Halanki unke naam Barra ki kitab-e-hayat mein likhe hue the, lekin Ruh de baptisme ka inkar hai.
He says, but they're both predestinated.
लेकिन दोनों जो हैं वो पहले से चुनी हुई हैं.
The bride and the foolish virgin.
ये दुल्हन और नादान कुमारियां कठिया चुन दिया ने. अच्छा.
Verse 11.
इसकी 11वीं आयत देखें.
I beheld another beast coming up out of the earth.
फिर मैंने एक और हवान को जमीन में से निकलते हुए देखा.
A beast is a power.
आप जानते हैं, याद कीजिए, हवान एक ताकत है.
The first beast. First beast came out of the sea.
Just a minute. 13th baap uski 11th ayat. Yes. Beast is a power. Hawan jo hai ye ek taqat hai.
And the first beast rose out of the sea.
Pehla hawan jo hai ye samundar mein se nikla hai.
That's multitudes of people.
Jo ke qaumon aur ummaton ko zahir karta hai.
This one comes up out of the earth.
और ये जो है ये जमीन में से आ रहा है.
A not so populated part.
ये कोई ज्यादा मशहूर हिस्सा नहीं है.
And that's America.
और ये अमेरिका है.
And he had two horns.
कोई
and
पता नहीं लगा. हाँ जी, they want again the explanation of this. You have said that the first is coming from the sea.
Revelations, okay, 13:1.
Okay, मैं 13वां बाप उसकी पहली आयत.
Okay, the first beast rises up out of the sea. 13:1.
जहाँ हमने देखा कि पहली आयत में लिखा है कि हवान को समुद्र में से निकलते देखा.
And it says the waters upon which the whore sitteth are multitudes of nations and tongues.
और हमने देखा कि वो कस्बी जिस पर बैठी हुई है वो उम्मतें कौमें और पानी इस बात को जाहिर करता है.
We read that in chapter
17 बाप में हम पढ़ कर देखा.
So we found that much water was much people.
ज्यादा पानी ज्यादा लोगों को मुशाबत है.
Now this is coming up out of the earth.
या आप जमीन की तरफ हम आ रहे हैं.
Not much people.
ज्यादा लोग नहीं है.
And this is America.
और ये अमेरिका है.
As it was being settled in the early days,
जिस तरह के पहले वक्त में वो कायम हुआ,
where people fled from America to get away from the Roman Catholic Church for freedom of religion in this new nation.
क्योंकि लोग रोमन कैथोलिक चर्च से निकले और इस जगह पे आए ताकि इस फ्री कौम के अंदर, आजाद कौम के अंदर आकर वो हासिल अपना पनपना सीखें.
Okay,
just a minute. This was a point which I think I'm not made clear. इन्होंने मतलब ये है कि जो जो जमीन समुंदर चो निकल रहा है ना, तो पानियों को जाहिर करते हैं बहुत सारिया कौमां ने, लेकिन जो जमीन चो निकल रहा है अमरीका एक छोटी कौम है. समझ आ गई उन्हें इस गल की? ओके.
Okay, and then it says this beast has two horns like a lamb.
और लिखा है कि इस बर्रा के दो सींग हैं जो कि अजदहा के दो सींग हैं.
Remember, horns are a beast's power of defense.
याद कीजिए कि ये जो सींग हैं ये उस हवान की ताकत का मुजाहरा है.
And the two horns on this little lamb,
और दो सींग इस छोटे बर्रा पर,
is civil power.
ये सिविल इख्तियार है.
Because the laws of America protect the church.
क्योंकि अमेरिका का कानून जो है वो कलीसिया की हिफाजत करता है.
And the other is ecclesiastical or religious power.
और दूसरा जो है वो रोमन कैथोलिक है जो कि एक ऐसी कुव्वत है.
Now the church is not supposed to be equipped with civil power.
चर्च की ये जरूरत नहीं है कि वो सिविलियन कुव्वत से उसकी बैक हो.
It's supposed to be Holy Ghost power.
ये तो हम समझते हैं कि उसकी बैकिंग के लिए, उसको बचाने के लिए रूल कुद्दस की कुदरत की जरूरत है.
This is the church in America.
और जो ये चर्च अमेरिका के अंदर है,
a lamb, or like a lamb,
बर्रे की तरह.
The prophet said actually a buffalo.
भाई ने कहा ये एक भैंस है.
All right. Little lamb, innocent.
छोटा बर्रा जो कि मासूम है.
But two powers, civil and ecclesiastical.
लेकिन उसके साथ दो कुव्वतें हैं, एक है सिविलियन और दूसरी एक्लेसियाई.
And he spake as a dragon.
और वो अजदहा की तरह बोलता था.
Now a few hundred years are between these two times.
इन दोनों मौकों के मुताबिक कुछ हजार सालों कुछ सौ सैकड़ों सालों का जिक्र है.
So he said, what is this?
तो उसने कहा ये क्या है?
He said, it's the churches in America.
ये वो कलीसियाएं हैं जो अमेरिका में हैं.
Uniting together under the World Council of Churches.
और जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के तहत आपस में इत्तेहाद कर रही हैं.
And now can use political power because they represent millions of people.
और अब वो अपनी सियासी कुव्वत को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो सैकड़ों लोगों का इख्तियार जाहिर करते हैं.
And we're going to watch it happen in America.
और हम अमेरिका में ये देखेंगे कि क्या होने वाला है.
Right now there is a separation between church and state.
हम देख रहे हैं कि वहां अभी से ये अलगदगी शुरू होगी, कलीसिया अलग और रियासत अलग.
But the Bible says they're going to come together.
लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि फिर इकट्ठे होंगे.
Now look at your Bible pattern.
अपने बाइबल के नमूने को देखिए.
When the Jews wanted to crucify the Christ, what power did they use?
जब यहूदियों ने चाहा कि वो यीशु को मसलूब करें तो उन्होंने कौन सी कुव्वत और इख्तियार इस्तेमाल किया?
The religious power called on the civil power. Kill that man.
ये जो मजहबी थी और सिविलियन ताकत थी इसने यीशु को मौत के घाट उतारा.
And that will repeat again.
और इसी तरह दोबारा वाक्या होगा.
The church will cause the government to pass laws to kill people that don't agree with the system.
Churches जो हैं वो ऐसा कानून पास करवाएंगे गवर्नमेंट से कि वो ऐसा कानून पास करें कि उन लोगों के लिए वो कत्ल का सबब बने.
That'll be part of the mark of the beast.
और तो ये उस हवान का निशान का मिसाल है.
But because it's starting in America.
क्योंकि ये अमेरिका से शुरू होगा.
And America is a quote world power.
और आप जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की एक ताकत है.
Then it's going to influence the whole world.
तो ये पूरी दुनिया के साथ अपना लगाव और तल्लक जो है वो बढ़ा लेगा.
And the World Council of Churches started in America.
और ये जो World Council of Churches है ये अमेरिका से शुरू हुई.
Then it has its finger into all the nations.
तो उसकी सारी उंगलियां जो हैं वो सारी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं.
Verse 12.
इसकी 12वीं आयत 13.
And he exercises all the power of the first beast before him.
और ये पहले हवान का सारा अख्तियार उसके सामने काम में लाया था.
What was the first beast?
पहला हवान कौन था?
Roman Catholic Church.
Roman Catholic Church.
Using political power.
जो कि सियासी कुव्वत को इस्तेमाल करती रही.
To put out, annihilate all that stood against her.
सारी चीजों को खत्म तबाह बर्बाद कर दे जो उसके खिलाफ थी.
So it says all the power that the Roman Church used, this World Council will use.
तो सारी कुव्वत जो कि रोमन कैथोलिक चर्च ने इस्तेमाल की ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च उसको इस्तेमाल करेगा.
And causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed.
और जमीन और उसके रहने वालों से उससे पहले हवान की प्रस्तुति कराता था जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था.
What's that telling you?
वो आपको क्या बताता है?
They're going to point all the Protestants back to Rome.
वो सब प्रोटेस्टेंटों को जो है वो रोम की तरफ मुतवज्जो करेंगे.
Point him back to the first beast again.
ताकि वो पहले हवान की तरफ मुतवज्जो हों.
Now a few years ago this would have seemed impossible.
पहले कुछ साल ऐसा मुमकिन नजर आता था.
And yet now in America.
और अब अमेरिका के अंदर
many Protestant churches are giving them submitting themselves under the authority of the Pope again.
तो अब फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस लोग जो है फिरके जो है वो पोप के ताबे होने के लिए तैयार हैं.
Some of the biggest evangelical systems in America.
अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मुबशराना जो सिस्टम था
have signed an agreement with Rome.
उन्होंने रोम के साथ एक मुआहदा दस्तखत किया है.
We will no longer preach against you.
हम आपके खिलाफ कोई मनादी नहीं करेंगे.
We will no longer try to win your people.
हम आपके लोगों को अपनी तरफ लाने का हक नहीं रखेंगे.
That's exactly what it said would happen.
This is ये इसी तरह है जिस तरह के बाइबल के अंदर लिखा
है. Pointed right back to Rome again.
हम फिर रोम की तरफ वापस दोबारा आएंगे.
Verse 13.
इसकी 13वीं आयत.
And he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven and on the earth in the sight of men.
और वो बड़े-बड़े निशान दिखाता था यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजल कर देता था.
And quoting Brother Branham again.
और भाई ब्रैनम का फिर याद जिक्र करते हुए.
He said that great intelligent nation developing the first atomic bomb.
और हम ये देखते हैं कि ये वो ज़हीन कौम है जिसने सबसे पहला एटॉमिक बम तैयार किया.
And deceives them that dwell on earth by the means of the miracle which he had power to do in the sight of the beast.
और इस तरह गमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हवान की तलवार جس حیوان کو تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا.
He said, what is the miracle?
اور یہ معجزہ کیا ہے؟
He said, he gets all the churches to unite together.
یہ معجزہ ہے کہ وہ تمام کلیسیاؤں کو اکٹھا کر دیتا ہے.
So that's a miracle.
تو یہ ایک معجزہ ہے.
They've always been fighting among each other.
وہ پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے.
But he's going to get them to agree.
لیکن اب وہ ان کو متفق ہونے کے لیے تیار کرے گا.
The ecumenical move.
اور یہ ان کی وہ اکنامیکل موو ہوگی.
Saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live.
Usne hawan ke but mein ruh phonkne ka ikhtiyar diya gaya taaki wo hawan ka but bole bhi.
Okay, now what is an image?
Ye nishan kya hai?
When you look in a mirror you see your image.
Ye saya jo hai jab aap kisi sheeshe mein dekhte hain to aapka جو شکل اس کے اندر نظر آتی ہے
اس کو ہم تصور کرتے ہیں.
آپ کو کوئی خطرناک چیز دیکھنے کو نظر نہیں آئے گی.
Just look in that mirror right there.
آپ وہاں شیشے کے سامنے بیٹھے ہیں ذرا اس کے اندر جھانکے.
And you'll see your image.
تو آپ اپنی شبیہ کو وہاں دیکھیں گے.
Now they're going to make an image to the beast.
تو اب وہ اس حیوان کی شبیہ جو ہے بنانے کو ہے.
And what was the beast?
تو یہ حیوان کیا تھا؟
The first man-made religious organization.
یہ سب سے پہلے انسان کی بنائی ہوئی تنظیم تھی.
Under a Christian name.
جس کا نام مسیح تنظیم رکھا گیا.
So now they'll have another man-made religious system.
ابھی وہ دوبارہ بھی اسی طرح ایک انسان کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے اسے اپنائیں گے.
Under a Christian name.
اور اس کا نام بھی مسیحی نقشے کے مطابق ہوگا.
And using government as its power.
اور گورنمنٹ کو وہ گورنمنٹ کا اختیار استعمال کریں گے, اس کو اپنا ہیڈ مانتے ہوئے.
That's what the first beast did.
اور اسی طرح پہلے حیوان نے بھی کیا.
That's what the second one will do.
اور دوسرا بھی ایسا ہی کرے گا.
And he had power to give life unto the image of the beast.
اور اسے اختیار کہ وہ اس حیوان کی شبیہ کو زندگی بخشے.
That as many as would not worship the image should be killed.
اور جو اس حیوان کی پرستش نہ کریں گے ان کو قتل کر ڈالیں گے.
And he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead.
اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دینے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کر دی.
Now, in America, especially the Pentecostal churches are preaching all kinds of nonsense about right hand and forehead.
ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر خاص طور پر پینٹیکاسٹل چرچز جو کلیسیا ہیں وہ دائنے ہاتھ اور ماتھے کا خاص ذکر کرتے ہیں.
Yeah, they've got tattoos on your forehead and computer chips placed in your hand.
ہاں, انہوں نے ابھی سے ہی شروع کر دیا ہے کہ کمپیوٹر کا سسٹم جو ہے وہ اپنے دائنے ہاتھ پر اور ماتھے پر کچھ اس کا کروایا ہے.
But it's really simple.
یہ ایک نشان ہے.
The prophet said the right hand means support.
نبی نے یہ کہا کہ دائنا ہاتھ جو ہے یہ اختیار ہے.
You're paying into it.
آپ اس سے پیسے دیتے ہیں.
That's a worldwide symbol.
یہ دنیا کے اوپر مانی ہوئی تمثیل ہے.
Go to any nation, it all means the same thing.
آپ کسی قوم سے بھی جا کر پوچھیں وہ سمجھتے ہیں کہ دائنا ہاتھ کیا ہے.
Is that right?
Yeah, it's right.
So support, so right hand is support.
یہ جو ہمارا دائنا ہاتھ جو ہے یہ مدد ہے.
And forehead is your revelation or understanding.
اور یہ جو ماتھا ہے یہ آپ کا مکاشفہ ہے یا آپ کی سمجھ ہے.
Brother Branham, excuse me, God told Israel, you have a whore's forehead.
خدا نے اسرائیل سے کہا کہ تیرا ماتھا جو ہے وہ گھوڑے کی طرح ہوگا.
It was the way she was thinking.
اور یہ اس کی سوچ تھی جس طرح سے وہ سوچ رہا تھی.
So the mark is in your right hand or your forehead.
یہ نشان یا چھاپ آپ کے دائیں ہاتھ پر ہوگی یا ماتھے پر.
If you're marked in your forehead, that means you agree with it.
اگر آپ کے ماتھے پر ہے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ ان کے معاہدے کے ساتھ رضامند ہیں.
Though you may not agree with it,
لیکن ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہوں.
But you support it.
کیونکہ وہ آپ کو مدد دیتے ہیں, آپ کی مدد کرتے, سپورٹ کرتے ہیں.
You're still marked.
تو پھر بھی آپ اس نشان کے نیچے ہیں.
And reasoning will cause many to support it.
اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سپورٹ میں حصہ دار بننا چاہیں گے.
Well, if I don't join the system, they'll close my church.
تو اگر میں اس سسٹم کے اندر نہ داخل ہوں تو میرا چرچ جو ہے وہ بند ہو جائے گا.
So even though I don't agree with it,
میں اسے مانتا تو نہیں ہوں.
I'll support it so that I can keep my church going.
میں اس مدد کو لیتا رہوں گا تاکہ میرا کلیسیا جو وہ کام کرتی رہے.
You've just been marked.
اور یہ ہے کہ آپ پر چھاپ لگ گئی ہے.
I will take it a little bit further in a moment.
ابھی تھوڑا سے ہم آگے جائیں گے.
Now you're familiar with the law of jubilee.
سالے جبلی کے سے آپ واقف ہیں.
Every 50 years, you know the jubilee.
آپ جانتے ہیں کہ 50واں سال جو ہے سالے جبلی کہلاتا ہے.
Old Testament jubilee.
پرانے عہد نامے کی جبلی جو ہے.
When the slave could go free.
جب کہ غلاموں کے لیے موقع تھا کہ وہ آزاد ہو جائیں.
In the jubilee year.
یہ جبلی سال میں.
But he could refuse to go free.
وہ آزاد اگر نہیں ہونا چاہتا تو وہ انکار کر سکتا تھا.
Because he loves his master or his wife.
کیونکہ وہ اپنے آقا اور اس کی بیوی سے پیار کرتا ہے اس لیے وہ آزاد نہیں ہونا چاہتا.
If he refuses to go free,
اگر وہ آزاد نہیں ہونا چاہتا
he's taken down to the temple,
تو اسے ہیکل کے اندر لے جایا جاتا تھا.
And it says that all is pierced through his ear to mark him.
تو اس کے یہاں ایک رنگ جو ہے وہ بالی ڈال دی جاتی تاکہ یہ نشان ہو.
And now he can never go free.
اب وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتا
In
ہے
the New Testament,
نئے عہد نامے میں
you shall know the truth,
آپ کو حقیقت,
and the truth shall set you free.
آپ کو حقیقت سچائی سے واقف ہو تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی.
When you refuse the truth,
جب آپ اس سچائی کا انکار
کرتے ہیں, you are spiritually pierced in your ear.
تو آپ when you refuse,
when you
refuse, جب آپ اس آزادی سے رہنا چاہتے یعنی انکار کرتے کہ نہیں جانا جی اتھے رہنا ہے, تو پھر روح القدس کی قدرت سے آپ کے کانوں کے اندر بالی ڈال گئی گئے کہ اب آپ جا نہیں سکتے ہیں. آمین.
And you'll never hear the truth.
اور آپ کو یہ سچائی پھر کبھی حاصل نہیں ہوگی.
Verse 18.
18th ayat.
Well, first of all, it says that the to receive the mark or the name or the number of his name.
Nishan aur hawan ka naam ya uske naam ka adad koi bhi khareedo farokht na kar sakega. Ya hum ye pehle dekhte hain.
Now we understand about the mark, right hand or forehead.
Abne abhi dekha ki ye chhap jo hai dahina haath aur matha kya hai.
To receive the name of the beast.
اس حوان کا نام کو لینا.
That's that entire Roman World Council system.
یہ رومن کا ورلڈ کاؤنسل سسٹم ہے.
Or the number of his name.
یا اس کے نام کا عدد.
And the last part of verse 18 says the number is 666.
اور آخری حصے میں لکھا ہے کہ اس کا نمبر 666 ہے.
And I'm sure you know about that.
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں اس بات کے بارے میں پتہ ہے.
Over the Pope's throne is vicarius filii Dei. When you add up all the Roman numerals,
یا پوپ کے تاج میں اور تخت پر لکھا ہوا وکاریس فیلی ڈے, جس کا مطلب ہے 666, خدا کے بیٹے کی جگہ.
So we're on the very edge of all this happening.
اس ان وقوع واقعات کے ہونے کے بالکل ہم اختتام پر ہیں.
We already see the Protestant churches turning back to Rome.
ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹسٹنٹ چرچوں کی توجہ بھی روم کی طرف ہو گئی ہے.
And they're just waiting for the power from the government.
وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب انہیں گورنمنٹ سے یہ اختیار مل جائے.
And then they'll try to close all the churches that do not agree with their system.
تو وہ تمام کلیسیاؤں کو چرچز کو بند کر دیں گے جو ان کے موقف کے ساتھ متفق نہیں ہیں.
Which is doing the very same thing the first beast did.
جو کہ پہلا واقعہ جو حوان نے کیا اس کے ساتھ بالکل یہ ملتا جلتا ہے.
As Brother Branham said, they will close this church, or so they think.
جس طرح کہ بھائی برینم نے کہا کہ وہ اس بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس چرچ کو, اس کلیسیا کو ختم کر دیں یا بند کر دیں.
They may close the church door.
وہ کلیسیا یا چرچ کی بلڈنگ کی دروازہ بند کر دیں.
But the saints will still meet somewhere.
لیکن مقدسین پھر بھی کہیں ملیں گے.
Until we're taken out of here.
جب تک ہم وہاں سے نکالے جائیں. While I was in England and I was with brother. He's worried that they will close the door of the church which we have made.
Yeah, that's okay. We're getting ready to build a new church ourselves, so
yeah.
We don't know when it'll happen.
When it happened. But I was in England and brother I was there with brother, what's his name is? Bent. He was telling that France has already passed a regulation like that, that the churches which has not registered, you know, they cannot worship freely.
Oh yeah, right.
Yeah.
Yeah, yeah.
It is coming into being.
Yeah, yeah. Other countries.
میں فرانس میں وہاں تھا لندن میں, تو بھائی ایک چرچ نے وہاں سے اناؤنس کیا کہ فرانس کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ پورا ہو رہا ہے.
All these cults that are committing suicide and doing these crazy things, they're just making the government by their actions takes legitimate actions against churches.
ایسے فرقے ہیں جو کہ بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو باندھتے ہیں, قتل کرتے ہیں, مارتے کوٹتے ہیں, تو گورنمنٹ ایسا انتظام کر رہی ہے تاکہ وہ ان کلیسیوں کا جو رجسٹرڈ ہیں ان کی تحفظ کر سکیں.
But it's all working to the plan of God.
लेकिन ये सारा सब कुछ सब खुदा के मर्जी के मुताबिक है.
Just like the new European Economic Community.
जिस तरह के नई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो का वजूद में आना है.
Yeah, they each one of those big men think, well, I'm going to rule all of Europe.
तो उनमें से हर एक बड़ा आदमी जो है वो ये सोचता है कि मैं पूरे यूरोप पर हुक्मरान हो जाऊंगा.
But when they get it all finished,
और जब ये सारा खत्म हो जाएगा,
the Pope will step on the throne.
तो फिर पोप जो है वही आपको तख्त पर नजर आएगा.
They're just getting it ready for him.
और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं.
They don't know that.
उनको इस बात का भी पता नहीं.
But Satan knows that. Satan knows that.
लेकिन शैतान को इस बात का इल्म है.
He knows exactly what he's doing.
उसको बिल्कुल पता है कि वो क्या कर रहा है.
But the bride has been warned.
लेकिन ब्राइड के लिए ये इशारा है, ये सलाह है.
How much time? Okay, Daniel chapter 2 again.
आइए दानियल की किताब और उसके दूसरे बाब के अंदर हम चलते हैं. दानियल नबी की किताब दानियल दूसरा बाब या वर्स.
The verse we skipped was verse 35.
जहाँ से हमने छोड़ा वो 35वीं आयत थी. दूसरा बाब और उसकी 35वीं आयत से हमने छोड़ा.
Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together and became like chaff of the summer threshing floor. Wind carried it away, no place was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Verse 34 and 35, chapter 2.
Okay. Iski 34th or jahan ye likha hua hai ke let me go through. Us murat ka sar khalis sone ka tha, uska seena aur uske baazu chandi ke, uska shikam aur uski raane tambe ki thi. और उसकी टांगें लोहे और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के थे. ओके
34
एंड 35. ओके तो उसे तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया. नो 35. तब लोहा और मट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खिलानों के भूसे की मानंद हुए और हवा उनको उड़ा लेगी यहाँ तक कि उनका पता तक ना मिला और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम रुए ज़मीन पर फैल गया.
Now this image right here is going to confirm what we've already been talking about.
हम देखते हैं कि ये जहां हम एक नमूना और शबी नजर आती है ये इस बात की तस्दीक है कि हम क्या कुछ करने को और कहने को हैं.
Okay. Gold, silver, brass, iron and clay.
सोना चांदी तांबा लोहा लोहा और मिट्टी.
You remember the image.
आप इस जानते हैं इस बुत को.
Now here comes the smiting stone.
एक पत्थर जो है वो लुढ़कता हुआ आ रहा है.
And strikes my feet, the Bible said.
बाइबल ने कहा कि वो उसके पत्थर पांव पर गिरा.
But yet it says it broke the gold, the silver, the brass, the iron and clay.
गिरा तो वो पांव पर है लेकिन उसने सोने चांदी तांबे और लोहे को भी साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया.
How can I strike the feet and break all of this?
ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज जो है वो मेरे पांव पर लगे और सारा सिर से लेकर पांव तक चिकनाचूर हो जाए?
Because all of these powers have gathered in the last kingdom.
और क्योंकि हम देखते हैं कि ये सारा इख्तियार और सारी हुकूमतें जो हैं ये मिल मिलाकर इसका सारा इख्तियार पांव पर आ गया था.
The lion, the bear, the leopard are all down at the bottom now.
और अब वो पूरा इख्तियार जो है चूंकि जमीन पर था बुनियाद पर पांव में था.
And so when the bottom is smitten, everything is broken.
तो जब इस पर वो पत्थर गिरा तो उसको उसने तोड़कर चिकनाचूर कर दिया सारी कुफ्ता खत्म हो गई.
Now the smiting stone is the capstone on the pyramid.
आप जानते हैं कि ये लुढ़कता हुआ पत्थर जो है ये उस पिरामिड के ऊपर हमें एक पत्थर जो है उसका नमूना बताता है.
Has the statue of a perfect man been translated here?
Not yet. क्यों जी? Structure of a perfect man हाली translated.
Oh yeah, up here. Okay, you got it up here.
Yeah.
Okay, the capstone on the pyramid is the smiting stone.
ये इस मखरूती मीनार पर आपको जो अलादा पत्थर नजर आ रहा है ये वो पत्थर है जो लुढ़क रहा है.
Now there is a natural smiting and a spiritual smiting.
देखिए कि कुदरती और रूहानी तौर पर इसका ٹکرانا جو ہے وہ وجود میں ہے.
The natural smiting we read about in Revelations 18.
دنیاوی طور پر اس کا ٹکرانا جو ہے ہم نے مکاشفہ 18 باب میں پڑھا.
God puts it in the hearts of the 10 kings to destroy that system.
خدا نے ان 10 بادشاہوں کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ وہ اس سارے نظام کو ختم کر دیں.
But the spiritual has already come by the word of the hour.
کیونکہ روحانی جو ہے اس کا ٹکرانا وہ خدا کے کلام کے سبب سے ہو چکا ہے.
That system cannot deceive you because you have the word on it.
جو دوسرا دنیاوی نظام ہے وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے پاس اب روحانی مکاشفہ ہے.
Brother Branham of course told us that the iron is the Rome.
بھائی برانم نے کہا کہ لوہا جو ہے یہ روم ہے.
And in the feet now,
پاؤں کے اوپر.
And the clay is Protestantism.
اور یہ جو مٹی ہے یہ پروٹسٹنٹ ہے.
Verse 43.
اس کی 43ویں آیت.
Whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men.
Verse 43. Three. Let me just find out. دوسرے باب دی 43ویں آیت. جی جی. اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اور وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے, لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے. یا
He said they'll mingle themselves, they'll marry their Catholic daughters to Protestant boys.
کہتے ہیں کہ وہ آپس میں میل ملاپ کریں گے اور پروٹسٹنٹ لڑکے جو ہیں وہ رومن کیتھولک لڑکیوں سے شادی کریں گے.
And then they have to promise to raise the children Catholic.
اور پھر ان کے اندر یہ معاہدہ ہوگا کہ جو بچے پیدا ہوں وہ رومن کیتھولک تعلیم کے معیار پر تیار کیے جائیں.
Okay, now in our image we're down to the feet of clay, iron and clay.
ہم بت کی تشبیہ کے سلسلے میں پاؤں پر تھے جہاں مٹی اور لوہا دونوں کا ملاپ ہے.
And on each feet is 5 toes on each foot.
اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پاؤں کی 5 انگلیاں ہیں.
Verse 44.
44ویں آیت.
And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall not be destroyed.
اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی.
And then Brother Branham brought this to our attention.
اور پھر بھائی برینم نے ہماری توجہ کو اپنی طرف مائل کیا.
At a meeting of the United Nations.
United Nation کی جگہ پر.
Khrushchev, who was the head of Russia at that time.
Khrushchev. What was his name? Khrushchev, جو کہ اس وقت کا صدر تھا.
ہاں. Was there representing 5 nations.
جو وہ 5 قوموں کو کی نمائندگی کر رہا تھا.
America's president was Eisenhower, representing 5 nations.
یا امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا Eisenhower, وہ بھی 5 قوموں کی نمائندگی کر رہا تھا.
And in that meeting, Khrushchev took off his shoe and hammered on the podium.
اور اس میٹنگ میں خرشچیف نے اپنا جوتا اتارا اور اس کے اوپر اس کو مارا.
And he said, America, we will bury you.
اس نے کہا امریکہ ہم تمہیں دفن کر دیں گے.
And he said, Brother Branham said, why would that mighty man do a thing like that?
یہ طاقتور آدمی نے اس طاقتور نے ایسا کیوں کیا؟
He said, because it was God calling our attention to the feet.
یہ خدا تھا جو ہماری توجہ کو پاؤں کی طرف مشغول کرا رہا تھا.
And we find that Khrushchev means mud or clay.
اور خرشچیف کا آپ ترجمہ جانتے ہیں کہ مٹی, mud and.
And Eisenhower, Eisen means iron.
اور Eisen کا مطلب ہے لوہا.
So here was the 5 and 5, iron and clay.
آپ نے دیکھا کہ 5 اور 5 مٹی اور لوہا.
And in the days of these kings.
اور ان بادشاہوں کے زمانہ میں.
That's when the message of the hour was coming out.
اور یہ وہ وقت تھا جبکہ وقت کا پیغام آ رہا تھا.
And it was smiting the image.
اور وہ اس بت کو توڑ رہا تھا.
That a people would not be deceived.
تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں.
And it says that this smiting stone will become a great mountain and fill the whole earth.
تو یہ لٹکھڑاتا ہوا پتھر جو ہے یہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا.
A mountain is a kingdom.
اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے یہ بھی ایک بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے.
The smiting stone is the word for the hour.
اور یہ لٹکھڑاتا ہوا پتھر جو ہے یہ وقت کا پیغام ہے.
And out of this is coming a word kingdom.
اور اس میں سے ایک کلام کی حکومت اور بادشاہت ہوگی.
Which will be the king and the queen reigning during the millennium.
اور یہ بادشاہت کے اندر بادشاہ اور ملکہ جو ہے حکومت کریں گے.
And the message is already on the earth to prepare this.
اور پیغام جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہے تاکہ وہ اس کو تیار کرے
and to destroy the power of this beast system
تاکہ وہ اس حیوان کی قوت اور اختیار کو ختم کرے
amen
amen
we'll quit right there
ابھی ہم اس بات کو ختم کریں گے
yep lord jesus
خداوند پیارے آسمانی باپ
thank you for your word
تیرے کلام کے لیے ہم شکر گزار ہیں
thank you for opening it to us
او خداوند کہ تو نے اسے ہم پر کھولا
things we never could have seen except you've opened it
اے خداوند ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک تو ظاہر نہ کرتا
and now lord may we learn what to do with what we know
اے خداوند اب ہم یہ سیکھنا شروع کریں گے کہ تو کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کریں
yeah, we ask it in jesus name
یہ تیرے ہی نام سے مانگ لیتے ہیں
amen
amen